ख्वाबों की खिड़की जो खोलूं तो देखूं खुले आसमां को मैं बाहों में ले लूं।
रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित एक रचना है जिसका नाम है फॉल ऑफ एन एंजल, एक फरिश्ता कैसे गिरा। दिखाया है गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता, उस फरिश्ते को धरती पर भेजते हैं एक स्त्री जो मर रही है उसकी आत्मा को लेके आने के लिए, और वो फरिश्ता धरती पर आता है, देखता है कि एक स्त्री मर रही है, परंतु उस स्त्री से चिपके हुए तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, कन्या है, अभी अभी शायद जन्म हुआ है, ट्रिपलेट। तो वो दृश्य वो फरिश्ता देखता है, और जब तक वो फरिश्ता वहां पहुंचता है वो स्त्री मर चुकी होती है। एक बच्चा अपनी मां को पकड़ के है और दो रो रहे हैं बच्चियां। ये दृश्य वो देखता है कि इन बच्चियों का क्या होगा, मैं इस आत्मा इस मां की आत्मा को लेके जाने आया हूं, कैसा निर्दय पूर्ण ये काम है, मुझे ये नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, कौन देखेगा इन यतीम बच्चियों को। तो वो खाली हाथ लौट कर चला जाता है और देवता से कहता है कि मैंने ये देखा इसलिए मैंने नहीं लाया। तो मृत्यु का वो देवता कहता है तुमने नाफरमानी की है, क्या तुमको लगता है कि भगवान के शासन में कोई अन्याय है, जो तुमको कहा गया था वो तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हारा काम ही ये है कि धरती पर अगर कोई मर जाता है उसकी आत्मा को लेके आना। इस तरह के सिद्धांत विश्व भर में अलग अलग जगह अलग अलग प्रचलित है, तो उसकी एक नहीं सुनी जाती और उसे शाप दिया जाता है कि जाओ अब तुम खुद मृत्यु लोक में मनुष्य बन जाओ। वो स्वीकार करता है इस बात को, पर कहता है इससे मुक्ति का कोई मार्ग। वो देवता कहता है कि अगर तुम तीन बार अपने ऊपर हंसो या तीन बार अगर तुम्हें हंसी आ गई तो तुम वापस अपने फरिश्ता रूप में आ जाओगे। वो धरती पर उतरता है, रूस की भूमि है, ठंड बहुत है, कुड़कुड़ाता हुआ एक कोने में बैठा है, शरीर पर गर्म वस्त्र भी नहीं है, और वहां से एक मोची जा रहा है। वो मोची देखता है कि ये मनुष्य बेचारा गरीब है, इसके पास कपड़े भी नहीं है, तो वो मोची अपने पास के कपड़े उसे दे देता है, अपने पास का अपना खाना उसे थोड़ा देता है और कहता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, कुछ नहीं बोलता है। वो मनुष्य द फॉलन एंजल, गिरा हुआ वो फरिश्ता, वो शापित फरिश्ता। वो मोची कहता चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं, पर मेरी जो पत्नी है ना वो बिल्कुल नाराज होगी मैं अगर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा तो, इसलिए तुम केवल चुप बैठना, बस कुछ मत बोलना, उसको जो बोलना है वो बोलने देना, क्योंकि ऐसे सड़क पर किसी को भी अगर मैं ले जाऊं तो वो तो नाराज तो बहुत होगी। तो वो घर ले जाता है और जैसे उस शापित फरिश्ते को घर ले जाता है, पत्नी पूछती है ये कौन है, इधर क्यों लाए हो हमारे घर में, वो कहता है ये हमारे पास रहने के लिए आया है। तो वो उसको बहुत सुनाती है, पहले ही घर में पैसे नहीं है, पहले ही जगह नहीं है, और उसमें ये भिखारी को लेके आया सड़क पर से, इनकी तो आदत ही ऐसी है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ सुनाती है। तो वो शापित फरिश्ता हंसता है, उसे हंसी आती है, पहली हंसी। हंसी इसलिए आती है कि वो सोचता है कितनी अज्ञानी ये स्त्री है, अगर किसी घर में फरिश्ता एंजल आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो जाता, सारा परिवर्तन हो जाएगा, दुनिया की सारी दौलत वहां आ जाएगी, और इसे पता ही नहीं इसके घर में कौन आया, ये मुझे भिखारी समझ रही है, और उसे हंसी आती है। कुछ दिनों के बाद जैसे वो वहीं रहने लगता है, वो मोची उसे अपना काम सिखा देता है, नौकर की तरह काम करने लगता है, वो भी जूते बनाने लगता है, परंतु उसके जूते ऐसे होते हैं कि वो मोची इतना प्रसिद्ध हो जाता है, दुकान खुल जाती है, अद्भुत कारीगरी उस शापित फरिश्ते में होती है, और धीरे धीरे इतना वो प्रसिद्ध हो जाता है मोची कि एक बार रशिया का राजा जिसे जहार कहते हैं, उसके सिपाही आते कहते हैं कि राजा के लिए जूते सिलाने हैं, एक हफ्ते के अंदर जूते तैयार करके रखो, पर हां ध्यान रखना जूते सिलाना चप्पल नहीं। तो वो मोची अपने नौकर शापित फरिश्ते को कहते हैं कि राजा के लिए जूते सिलाने ध्यान से सिलाना और अच्छे से सिलाना और चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना। एक हफ्ते के बाद जब वो मोची देखता है बन गया तो वो दिखाता है ये है चप्पल। वो उसे इतना डांटता है कि तुमको कितनी बार समझाए तुमको जूते बनाने हैं चप्पल नहीं। बेचारा वो शापित फरिश्ता सुनते रहता है सुनते रहता है, और तब तक राजा के सिपाही आते हैं कहते हैं रुको रुको तुम लोगों ने क्या बनाया, कहीं जूता तो नहीं बना दिया, चप्पल बनानी है, राजा मर चुका है, और जो मरा हुआ होता है वहां का वहां की प्रथा है कि मरे हुए व्यक्ति को जूते नहीं चप्पल पहनाई जाती है, इसके लिए अभी हमको चप्पल ही चाहिए। फिर से वो शापित फरिश्ता दूसरी बार हंसता है, इस बात के लिए हंसता है कि मनुष्य को यह पता नहीं आगे क्या होने वाला है, राजा को नहीं पता था कि आगे मृत्यु है, वो तो समारोह का आयोजन कर रहा था। उसे हंसी आती है मनुष्यता पर कि यहां किसी को कुछ पता नहीं है, परंतु फिर भी बहुत सारी चीजें व्यक्ति रचता है, ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, और कब काल का ग्रास बन जाता है पता नहीं चलता है, कब काल के गाल में चला जाता है पता नहीं चलता है। मोची पूछता है तुम क्यों हंस रहे थे, वो कहता है अभी नहीं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा रुको, अभी दो हो गए तीसरा बाकी है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं, वो वहीं काम करते रहता है, और एक दिन बहुत बड़ी दुकान बन जाती है, उस दुकान में एक बहुत अमीर महिला आती है जिसके साथ उसकी तीन बेटियां हैं। जैसे ही वो फरिश्ता उन तीन बेटियों को देखता है उसे याद आता है ये तो वही है छोटी छोटी, वो फरिश्ता है ना सब जान सकता है, वो कहता है ये तो वही तीन बच्चियां है। उस महिला से पूछता है ये कौन है, तो वो कहती है ये मेरी बेटियां नहीं है, मेरी जो पड़ोसन थी उसकी है, वो तो गरीब थी बेचारी मर गई, अच्छा हुआ अगर ये उसके पास होती तो आज भीख मांग रही होती, अच्छा है मेरे पास है, मैं इतनी अमीर, अब मैंने उनको इतना भला पाल पोस कर बड़ा कि अब इनकी शादियां होने वाली है। और तब उस फरिश्ते को अपनी गलती का एहसास होता है, वो सोचता है मैं क्या सोच रहा था, उस मृत्यु को के देवता को मैंने कहा कि तुमने गलती कर दी, भगवान से गलती हुई है, जबकि इस सृष्टि पर जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। और वो महिला करती है, अभी मैं मर जाऊंगी तो अपना मेरी सारी संपत्ति इन तीनों की होगी, तो उसे आत्मग्लानी होती है और वो तीसरी बार हंसता है और फिर मुक्त हो जाता है। तो ये कहानी एक ऐसे फरिश्ते की है जिसने नाफरमानी की, अवज्ञा की, फिर गिरा, मनुष्य बना और मनुष्य बनने के बाद तीन बार हंसी आई और फिर वापस फरिश्ता बना। जब हम अपने ऊपर हंसना सीखते हैं, जब अपनी ही गलतियों पर हंसना सीखते हैं और जब अपनी ही की हुई भूलों पर हंसना सीखते हैं, तब हमारी यात्रा पुनः फरिश्ता बनने की चालू होती है। दूसरों पर हंसना बहुत आसान है, अपनी ही गलतियों पर, अपनी ही खामियों पर, अपनी ही मिस्टेक्स, गफलत पर, भूलों पर हंसना, हे मूर्ख मन तू कर क्या रहा है, तुझे करना क्या है और तू क्या कर रहा है, क्या ये तेरे जीवन का लक्ष्य है? सुबह से लेकर रात तक हम अपने आप को देखें, कितना समय हमारा व्यर्थ चला जाता है, जहां पर एक एक पल पल का हिसाब है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी कि हमारा समय कहां जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से ही बात करनी है और अपने ऊपर ही हंसना है, तुझे करना क्या है और तू कर क्या रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे वापस फरिश्ते कैसे बने इस यात्रा की, वापस ये उड़ान कैसे भरे, ये परवाज, द स्पिरिचुअल फ्लाइट कैसे फिर से इस उड़ान का आरंभ करें। जितना जितना हम अपने संपूर्ण स्वरूप में रहने का अभ्यास करेंगे, उतना उतना संपूर्णता नजदीक आएगी और हम सब का फरिश्ता रूप वतन में पहले से ही है, हर एक का एक एक रूप वहां पर है। जितने ब्राह्मण नीचे हैं, उतने फरिश्ते ऊपर है। अब हमको अपने अपने फरिश्ते रूप के साथ मिल जाना है, जुड़ जाना है। जैसे कैलाश दीदी हमेशा अनुभव सुनाते हैं, बाबा को पहली बार देखा वतन में तो क्या कहा, नीचे आके, नीचे वाला ठीक नहीं है, ऊपर वाला सुंदर है बहुत। और बाबा भाई कई बार उसको भेजते रहे और कई बार पूछते रहे, अब जाकर देख के आओ, अब जाकर देख के आओ, और लास्ट लास्ट में जब भेजा तब कहने लगी, हाँ अब ठीक है, ये दोनों समान दिख रहे हैं। अब ब्रह्मा का भी अपना पुरुषार्थ चालू था, ब्रह्मा का भी अपना सूक्ष्म पुरुषार्थ चालू था, और उनका पुरुषार्थ इतना सूक्ष्म था तो शायद वहां आसपास रहने वाले भी नहीं देख पाए। एक तरफ सेवा, एक तरफ मुरली चलाना, एक तरफ स्थूल कार्य करना, परंतु अंदर ही अंदर देह से वैराग, अंदर ही अंदर इस मिट्टी से वैराग, अंदर ही अंदर स्पिरिचुअल लेवल ऊंची ऊंची जा रही थी। हमारी स्पिरिचुअल लेवल कहां है? अंदर ही अंदर विचार, सूक्ष्म संकल्प, कल्पनाएं, स्मृतियां, ये सब सब देह से ऊपर 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 उठ रहे थे और वो यात्रा केवल उनको ही पता थी और किसी को नहीं, और वो बहुत सूक्ष्म यात्रा थी, क्योंकि मन में, शरीर में जन जन के विकार समाये हुए हैं, उनकी स्मृतियां है, उनके संस्कार है, वो एक दिन के पुरुषार्थ से नहीं जाएंगे, ना एक साल के, ना कुछ समय से, बहुत बहुत लंबा पुरुषार्थ तभी वो जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो क्या किया जाए जिससे वापस हम ये रूहानी उड़ान, ये रूहानी प्रवास, वापस एक उड़ता फरिश्ता बन जाए? अभी अभी संडे भी मुरली चली थी, होली, होली के सात राज गिनाए। पहले तो कहा तीन बताता हूं, और फिर बढ़ाते बढ़ाते और एक बात करते करते सात तक पहुंच गए। होली अर्थात जलना, जलाना। किसको जलाना है? जो कुछ पुराना है उसको सबको भस्म कर देना है। आग चाहिए आग। दूसरा रंग, उसके रंग में रंग जाना। कितना रंग जाना? कि वो और हम एक हो जाए। उसका ज्ञान, उसके गुण, उसकी शक्ति, हमारे गुण, हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति है। एक तीसरा मिलन मनाना। केवल तुम ही हो संसार में जो इस मौज में रहते हो। जाओ ढूंढ के लाओ कि संसार में कोई है जो तुम्हारी जैसी मौज में होगा, तो बाप के सामने लाओ। तुम्हारी जैसी मौज किसी की भी नहीं है। अगर मिल जाए तो पकड़ के बाबा के सामने ले आना। फिर बाबा पूछेंगे वास्तव में है या झूठी मूठी मौज है। ये तीसरा। चौथा हल्का। होली अर्थात हल्का, लाइट, भारीपन नहीं है। पुरानी कोई बात भारी नहीं कर रही है। अगला समान। समान वहां पर सब समान मिलके होली खेलते हैं, और यहां पर भाई भाई की दृष्टि है। सब एक साथ, सबके लिए समभाव है। उसके बाद में अगला बीती को बीती। अगला पास्ट इस पास्ट। चाहे इतना भी कोई दुश्मन हो, क्या होता है यहां पर? पुराना सब कुछ। छठवा पिचकारी है, बीती वाला लास्ट है। पिचकारी हमारे नयन क्या बन जाए, क्या बन जाए? पिचकारी। ये होगा तब जब अंदर से आत्मा इतनी डिटैच है शरीर से। ये होगा तब जब अंदर का लेवल बहुत ऊंचा है। ये होगा तब जब आत्मा निरंतर आत्मा के चिंतन में रमन है। आज सुबह बोला खूब करो, क्या विचार सागर मंथन निरंतर करते रहो। जब आत्मा निरंतर उस अशरीरी संकल्पों के आनंद में रहती है, आनंद आत्मा के आनंद में रहती है, तब इन आंखों से जो कुछ जाएगा वो सामने वाले को क्या कर देगा? साक्षात्कार कराएगा। रूहानी दृष्टि की रूहानी पिचकारी, ये नयन बन जाए। ये है होली का छठवा राज। और होली का सातवा राज बीती सो बीती, फुल स्टॉप। कुछ भी याद नहीं करो, उसका वर्णन भी करने की आवश्यकता नहीं। वर्णन करने से भी वो बढ़ता है, उसकी स्मृति आती है। कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप, बस। ऐसी योग की अग्नि अंदर प्रकट करनी है कि भस्म ही हो जाए वो पूरा के पूरा। क्या वर्णन करे उसका? ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर उसने वो कहा, हमने ये कहा। किसी भी तरह का पास्ट का चिंतन नहीं, फुल पूर्ण विराम। तो होली के ऐसे सात राज बाबा ने गिनाए इस मुरली में। बाकी मुरलियों में और सारे बहुत है, वैसे तो बहुत सारे, बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है एक, पर इस मुरली में इतने थे केवल। तो हमारी यात्रा है फरिश्ता बनने की यात्रा। कैसे बने इसकी हम चर्चा करेंगे। एक फरिश्ता कैसे दिखता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, फरिश्ते का कंप्लीट परिचय कहो या बायोडेटा कहो, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी कम से कम 26 बातों की चर्चा करेंगे। पहला उसका रूप, पहला उसका रूप दिखने में कैसा है, अट्रैक्टिव दिखने में कैसा है। फरिश्ता अर्थात वो नहीं जो उड़ रहा है, जो चित्रों में दिखाया है। यहां पर ही फरिश्ता बनना है। एक फरिश्ता तो हमारा ऊपर है ही, उस तक पहुंचना है। वो पुकारता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें उस तक पहुंचना है। तो जो फरिश्ता स्वरूप में फरिश्ता रूप है, ये वो रूप है जो बहुत लाइट है, जो बहुत आकर्षक है। शरीर तो वैसा ही है, पर आत्मा फरिश्ता स्थिति में स्थित है, ना खुद को दुखी कर रही है ना दूसरों को दुखी कर रही है। किसी किसी की आदत है खुद ही खुद को दुखी करते हैं, दूसरों को कम दुखी करते पर खुद खुद दुखी हो जाते, खुद ही खुद घायल है, बहुत गहरे जख्म है। किसके दिए है? दूसरों ने नहीं दिए, दूसरों को वो सोचता है शायद ये देते हैं पर उन्होंने दिए नहीं है, उसके अपने निर्माण किए हुए, अपने दुख का रचयिता वो खुद है। जिस दलदल में वो फंसा है, किसने ढकेला है उस दलदल में उसको? उसने अपने आप को ऐसे पकड़ा और ढकेला, पीछे से किसी ने नहीं ढकला, उसी ने अपने आप को पकड़ा और ढकेल दिया, और फिर गिर के फिर चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। तो फरिश्ते का रूप हल्का, फरिश्ता रूप अंदर कोई भी किचड़ा नहीं है, पास्ट की कोई बातें नहीं है बात करने के लिए, हो गया फुल स्टॉप, अब आगे बढ़ना है। भारी नहीं है, हल्का है बहुत। तो अपने रूप को रोज चेक करना है कि मेरा रूप कैसा है, मेरा अपीयरेंस मेरा फॉर्म कैसा है, ठीक ठाक है या भारी है, कौन सी चीज मुझे भारी करती है इस ब्राह्मण जीवन में, कौन से व्यक्ति है जिनके संपर्क में जाते भारी हो जाता हूं और क्यों, कौन से स्थान है जहां जाके भारीपन लगता है, कौन सी परिस्थिति में भारीपन आ जाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जितनी परिस्थिति दर्दनाक उतना उसमें बहुत ज्यादा कल्याण छिपा हुआ है। और परिवर्तन जो होता है, चेंज की जो प्रोसेस है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। इंग्लिश में कहते हैं चेंज इज अ पेनफुल प्रोसेस। जब परिवर्तन होता है तो बहुत दर्द होता है, पर द रिजल्ट इज ग्रोथ। पर जो परिणाम होगा वो क्या होगा? विकास। तब समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आता है, पर जब उस प्रोसेस थ्रू जा रहे हैं, वो वियोग हो सकता है किसी का, वो कोई प्रिय वस्तु जिसको हमने पकड़ के है, कोई उसे ही छुड़ा रहा है हमसे, दर्द होता है। किसी की मृत्यु, दर्द होता है। पर जितनी पेनफुल प्रोसेस है, अंदर समझ लेना है बहुत कल्याण होने वाला है। शायद जीवन की वो अंतिम माया है जो छूट रही है, शायद जीवन का वो अंतिम विकार है, खामी है, दर्दनाक वस्तु जिसको हमने पकड़ के रखा था और भगवान चाहता है छूट जाओ। इसके लिए दुखी नहीं, उदास नहीं, पीड़ित नहीं। तो सबसे पहला, हमारा रूप कैसा हो? हल्का। हमारा रूप कैसा हो? जरा भी भारीपन नहीं उसमें। हमारा रूप कैसा हो? जो केवल वर्तमान का रूप है, अतीत का किचड़ा उसमें समाया ना हो। दूसरा, व्यवहार। दूसरी बात है फरिश्ता की, व्यवहार। कैसा व्यवहार होगा उसका? मधुर। कैसा व्यवहार उसका? इटिकेट्स होंगे, मैनर्स होंगे उसमें। जो दूसरे की वस्तु है वो दूसरे की वस्तु है, हम नहीं लेंगे। मांगना नहीं होगा उसमें, भीख मांगना नहीं होगा, शिष्टाचार युक्त होगा वो। अनरिटन मैनर्स जिसको कहते हैं, इटिकेट्स, लिखे नहीं है कहीं पर, अलिखित शिष्टाचार, साफ सुथरा। जहां जाएंगे वहां सफाई, कहीं पर भी गंदगी न करने का स्वभाव। कमरा स्वच्छ हो, अलमारी स्वच्छ हो, जूते ढंग से रखे हो, कपड़े ढंग से रखे हो, बाथरूम स्वच्छ हो, किचन साफ हो, हर चीज सलीके से, हर चीज तरीके से, हर चीज शिष्टाचार युक्त है। बात करना, व्यवहार, सब कुछ मेथोडोलॉजी, बाबा कहते विधि से सिद्धि, छोटी छोटी बातों में विधि, हर चीज की विधि होगी, एक छोटी सी छोटी चीज की भी विधि, वो है शिष्टाचार। तो व्यवहार को ऐसा करना है, तो थोड़ी अपनी कमरे की भी सफाई चालू करना है, या घर की पोस्ट दिवाली क्लीनिंग, दिवाली के बाद हमेशा याद रखना है बुद्धि में कि कौन सी चीज की सफाई करना बाकी है। ये हो गई, और सारा एक ही दिन नहीं करना, टुकड़ा 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 टुकड़ा, ताकि लंबा समय चले प्रोसेस। नहीं तो आज कर लिया और उसके बाद में करना बंद, अगले दिवाली देखेंगे अब सीधा। इसके लिए हमेशा बुद्धि में रखना, आज जूते ठीक किए, कल वो करना बाकी है। ये तो हो गया सफाई का, एक है बाहर की सफाई, एक है अंदर की सफाई, कान की सफाई। बहुत सुना है किचड़ा, उसकी भी सफाई बहुत जरूरी है। तो आचरण शिष्टाचार युक्त हो, बिहेवियर सदव्यवहार हो। तीसरा, संवाद वार्तालाप। फरिश्ते किस भाषा में बोलते हैं? आवाज में जोर जोर से हंसना, हा हा हा, अट्ठहास, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। और हंसते भी है तो कैसे हंसते हैं? मंद मंद। और कैसे हंसते हैं? कैसे हंसते हैं? तुम हंसो तो क्या हो जाए, कलिया खिल जाए, और तुम हंसो तो क्या हो जाए, क्या हो जाए, फूलों की वर्षा हो जाए। तुम्हारे प्रत्येक बोल में और हंसी में प्यूरिटी के शुद्ध प्रकंपन हो। पवित्र हंसी हो। किसी किसी की इतनी बड़ी होती है, ऐसा लगता है किसी के ऊपर हंस रहे, तो हंसी भी शुद्ध हो, हंसी भी प्योर हो, मंद हो, आवाज नाली ना हो बहुत ज्यादा। जैसे कि छोटा सा बच्चा कोई हंस रहा है, ऐसी हंसी। संवाद मधुर हो, किसी को दुखी करने वाला, हर्ट करने वाला ना हो। अपने शब्दों को चेक करना है रात में सोने से पहले, कि कौन से शब्द जो निकल गए, जो नहीं निकलना चाहिए। और एक बात, दूसरों के शब्दों को नोट करना है कि इन्होंने इतना जो अच्छा बोला, इसमें क्या अच्छा था, इसमें से मैं क्या सीखूं। उसके बाद है ड्रेस। फरिश्ते का ड्रेस कैसा होता है? कैसा ड्रेस होता है? चमकीला। कैसा ड्रेस होता है? व्हाइट। कैसा ड्रेस होता है? हल्का। कैसा ड्रेस होता है? खुला खुला। यहां पर हमको ड्रेस पहनना है समान का। आज की मुरली में कौन कौन से समान है? हम कौन से सितारे हैं? चमकते सितारे हैं, धरती के सितारे हैं, परमात्मा सत्ता है। और वो कौन सी सत्ता है? वो प्रकृति की सत्ता है। हम क्या करते हैं? निकलकर। और वो जो नहीं कर पाते, वो दिन को, वो रात को दिन नहीं बना सकते, हम रात को दिन बना देते हैं। कितनी सारी पॉइंट्स हैं। मुरलियों से समान निकालने हैं, रोज की मुरली से समान निकालने, और उसका अभ्यास करना है सारे दिन भर। नहीं तो मन का स्वभाव है कि वो नीचे जाता है, अतीत में जाता है, भविष्य में जाता है, चिंता करते बैठता है चीजों के बारे में। उस चिंता से, उस व्यर्थ चिंतन से निकालने के लिए रोज की मुरली सबसे श्रेष्ठ साधन है। आज इसलिए कहा, खूब करो क्या विचार सागर मंथन। खूब मतलब कितना? हद से ज्यादा। खूब मतलब जब भी समय मिले करते जाना, करते जाना, करते जाना। एक मुरली में बाबा ने कहा सारे दिन भर विचार सागर मंथन चलता रहे, बस उगाड़ते रहो। जो बच्चे उगाड़ते नहीं, जो गाय उगाड़ती नहीं, वो गोया बीमार है। जो बच्चे विचार सागर नहीं करते, वो क्या है? बीमार। तो अपने आप को स्वस्थ रखना है, अर्थात चिंतन चिंतन चिंतन, उगाड़ते जाना है उगाड़ते जाना है। बैठे है कहीं पर, यहां पर बैठे है, इंतजार कर रहे है बस का, चिंतन। नीचे जा रहे है, चिंतन। डिपार्टमेंट में जा रहे है, चिंतन। कुछ ना कुछ ज्ञान की पॉइंट सोचते रहना है कि ये जो बाबा ने कहा इसका क्या सूक्ष्म अर्थ है। तो चौथी बात फरिश्ते का ड्रेस, उसके बाद में उसका शिक्षण, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, क्या शिक्षण की जरूरत है फरिश्ता बनने के लिए, किस एजुकेशन की। ये जो ड्रामा का एजुकेशन है ये बहुत पक्का चाहिए, ड्रामा का शिक्षा बहुत पक्का चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत सारे दृश्य ऐसे आएंगे जो बहुत दर्दनाक होंगे और हमको लगेगा ये नहीं होने चाहिए फिर भी हो रहे हैं। उस समय उसे स्वीकार करना कि ये सब सत्य है और यही होना चाहिए, इसी में कल्याण छिपा हुआ है, कुछ भी अकल्याण इस ड्रामा में है ही नहीं। और कितना फास्ट हम इस ड्रामा के सीन्स को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। फरिश्ता अर्थात कोई भी चीज से डगमग नहीं, पांच तत्व है उनकी हलचल हुई, ये तत्व उसे विचलित ना करे, बहुत ठंडी बहुत गर्मी बहुत बारिश कुछ कुछ हो रहा है उधर और इधर आत्मा हिल रही है, ये फरिश्ते स्थिति की निशानी है। फरिश्ता अर्थात धरनी से ऊपर, धरनी अर्थात देह, धरनी का अर्थ जमीन नहीं होता है, धरनी अर्थात पांच तत्व, धरनी अर्थात जमीन नहीं, धरती जमीन है, धरनी अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीर ये हवा, गगन आकाश, अग्नि पावक धरती और पानी, ये पांच तत्व, तत्वों की कोई भी हलचल मुझे हलचल में ना लाए। तत्व तो हिलते रहेंगे, कभी बहुत गर्मी है कभी बहुत ठंड है, कभी बारिश है कभी सूखा है, कुछ ना कुछ होते रहेगा। फरिश्ता अर्थात जिसके पैर कहां नहीं है, फर्श पर पैर रखना पसंद ही नहीं है उसको, अर्श पर रहता है, धरती से ऊपर उठा रहता है, देहभान से ऊपर उठा रहता है, क्योंकि देहभान में आना अर्थात विकारों को आमंत्रित करना। मिट्टी से खेलते हो, लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, तुम रत्न हो और मिट्टी से खेलते हो, कणों से खेलते हो, बाबा को आश्चर्य लगता है, रत्न हो रत्नों से खेलो, अमूल्य रतन हो नवरतन हो अलौकिक रतन हो तुम हो। बाबा को मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, मिट्टी से खेलना, मिट्टी से खेलने वाले भी पसंद नहीं है। पर कल तो कहा था, क्या कहा था, जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं और जो मुझे नहीं याद करते, तो किस किस ने सोच लिया है कि अभी हम बाबा को याद नहीं करेंगे, क्योंकि परिणाम तो दोनों तरफ सेम है, जो मुझे याद नहीं करते मैं उनको भी याद करता, क्योंकि क्योंकि मुझे सबको साथ ले जाना है। कल कहा था बाप बच्चों को जलाएगा, कभी नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। और एक मुरली थी, कौन सी, मैं आया हूं सबके शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए। कल कहा कि मैं तुमको जलाऊंगा, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने, सोचा इसलिए क्योंकि तुमने ही कहा था। तो फरिश्ता अर्थात जिसका ड्रामा का एजुकेशन बहुत पक्का हो गया है, इसके लिए यहां की कोई बात नहीं लाती, क्योंकि व्यक्ति बदल देंगे, व्यक्तियों का स्वभाव बदलता है, व्यक्तियों के शब्द बदलते हैं, जिन पर विश्वास किया वो विश्वासघात करते हैं, व्यवहार जिनका मृदु था अब कटु हो गया है, अचानक परिवर्तन व्यक्तियों में, अचानक परिवर्तन प्रकृति में, अचानक धरनी परिवर्तन, क्योंकि जो धरनी से ऊपर रहते हैं उन्हें ये कोई चीज आकर्षित नहीं करती ना ही खींचती है, परिवर्तित उनकी वजह से वो नहीं होते। तो फरिश्ता की पांचवी बात क्या, ड्रामा का शिक्षा, ड्रामा की शिक्षा बहुत पक्की है। फरिश्तों की छठवी बात भोजन, फूड, भोजन कैसा हो फरिश्तों का, कैसा, पवित्र हो और कैसा हो, सात्विक हो और कैसे हो, लाइट की थाली में लाइट का भोजन, लाइट के हाथ से लाइट का निवाला, लाइट के मुख में, लाइट के अंदर शरीर में जा रहा है और क्या बन रहा है, लाइट, और विश्व में क्या फैला रहा है, लाइट, लाइट सब्जी, लाइट रोटी। संपूर्णता के नजदीक जाने वाले योगियों का भोजन भी धीरे धीरे हल्का होते जाए, जितना भोजन हल्का उतनी स्थिति हल्की, जितना भोजन भारी और भरपेट उतनी स्थिति भी भारी। स्थिति और भोजन का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। तो योगियों का भोजन कम, और जितना हो सके प्रकृति के समीप, जब जब आत्मा प्रकृति से दूर गई है, बीमार हुई है, जब जब प्रकृति के समीप आई है, स्वस्थ रही है। तो भोजन, स्थूल भोजन हल्का हो, लाइट हो, और जितना हो सके प्रकृति के समीप वाला हो। उसके बाद में गेट, चाल, फरिश्तों की चाल कैसी होती है, भाग भाग के, चिल्ला चिल्ला के। बाबा कहते थे, मम्मा जब चलती है तो धरती को बहुत खुशी होती है, बहुत हल्के, बहुत धीरे, बहुत लाइट, हड़बड़, भाग दौड़, इधर भागू उधर भागू, ये करू वो करू, इसको देखू उसको देखू। जैसे किसी का कमरा देखकर उसके मन की स्थिति का पता चला जा सकता है, वैसे किसी की चाल देखकर भी मन में क्या चल रहा है वो पता किया जा सकता है। दादी जान की जब कहीं जाती थी किसी लौकिक वाले के घर, लौकिक अर्थात जो घर गृहस्थ में रहते थे लौकिक में, तो सबसे पहले कहां जाती थी, किचन देखने, रसोई कैसी है, ठीक ठाक है सब कुछ, इधर उधर बर्तन पड़े हुए हैं, झूठे बर्तन वैसे छोड़ दिए तो क्या कहते हैं संसार में, रात में क्या करते बर्तन, अच्छा टकराते कि रोते, टकराते फिर रोते। सच हो तो चाल धीरे, धक्का धुक्की वाली ना हो, जा रहे हो दो तीन को धक्के देकर, कोई सोया है बेचारा हमारे कमरे में, हम आए लेट सेवा करके, वो तो सो गया, लाइट ऑन की सबसे पहला काम तो दरवाजा जोर से खोला और चलते हुए उसको ठोकर लगा के गया, बेचारा उठ गया। अब बेचारे को नींद कब आएगी पता नहीं, अमृत वेला सोचा था जल्दी सो जाऊंगा अमृत वेला उठने के लिए, और 11 बजे नींद तोड़ दी बेचारे की। देखना है किसी से टकराते तो नहीं है, चलते चलते फरिश्ता अर्थात हल्की चाल, फरिश्ता अर्थात धरती पर नहीं चलने वाले, थोड़ा सा ऊपर, धरती के ऊपर। उसके बाद में आदतें, हॉबीज। फरिश्तों की आदतें कौन कौन सी होती है, ब्राह्मण जीवन में ऐसी कौन सी आदतें चाहिए जिससे बहुत तेजी से प्रगति हो जाए अध्यात्म में। सबसे पहला रीडिंग, अध्ययन, पढ़ना। कईयों का पढ़ना छूट चुका है, पढ़ते थे पहले अब नहीं पढ़ते, कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ना जरूरी, आध्यात्मिक होना चाहिए, पर वो व्यर्थ का नहीं। अगर कोई नॉवेल पढ़ते हुए देखो तो क्या करो, उसकी नॉवेल जाके फाड़ दो और फिर मुरली में आया ये, अगर वो पूछे तो बोल देना बाबा ने कहा था, श्रीमत का पालन किया है। नॉवेल की बात नहीं है, व्यर्थ का पढ़ते रहते हैं लोग। यहां तो एक एक मोती है ज्ञान का, वो एक एक मोती पढ़ना, उसको अंदर समाते जाना है। और जो लोगों को पढ़ने की आदत है उनको, उनकी स्थिति हमेशा ऊंची रहती है, ये देखा गया है। और जिनको पढ़ने की आदत छूट चुकी है वो हलचल में आते रहते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले हमेशा सोचते रहते हैं अब क्या, उसमें क्या नया है, उसमें क्या नया है। दूसरी आदत है लिखना, रोज एक आर्टिकल पर लिखना है, मुरली से एक पॉइंट लेनी है और उसके ऊपर सोचना है ये क्या है। जैसे कल की मुरली में था एवरीथिंग न्यू, नया टॉपिक है। सतयुग में कैसा होगा, सब कुछ नया होगा। एवरीथिंग न्यू, क्या नया, लिख के रखो और फिर सोचो। सब कुछ बोल के खत्म नहीं करना, सोचना है क्या नया। एक एक चीज यहां की देखनी है, यहां की दीवारें ऐसी है वहां की कैसी होगी, वहां का वो ऐसा है वहां का कैसा। वहां घड़ी होगी क्या सतयुग में, घड़ी नहीं, दादी की क्लास में है, सतयुग में घड़ी नहीं होगी। दिन रात तो होगा पर घड़ी नहीं होगी। सोचना एक एक चीज जो यहां दिखाई दे रही है, जो कुछ यहां दिखाई देता है वो वहां कैसा होगा, लाइट कैसे होंगे, कमरा कैसा होगा, माइक, भाषण विषण, कोई भाषण नहीं। एवरीथिंग न्यू मुरली में आया था, वहां से उठाओ उसको, ऐसे उसको बाजू में रखो। और रोटी बेलते बेलते क्या करना है, सोचना है एवरीथिंग न्यू अर्थात क्या न्यू, रोटी कैसी होगी, क्या कैसे होगा, सोचते रहना है। ज्ञान का सोच, ज्ञान की सोच निरंतर। तो दूसरी आदत लिखना और तीसरी आदत ज्ञान की चर्चा, आपस में पूछो कि ये बाबा ने जो कहा इसका क्या अर्थ हो सकता है, कौन सी नई बात ये कह दी आज, ऐसा क्यों कहा। आपस में चर्चा चालू रहे। दो तीन दिन पहले स्लोगन था, जैसे समय की रफ्तार तेज है, क्या करो पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज कर दो। अपने आप से पूछना है मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार क्या है। कल जैसी पुरुषार्थ हुआ आज भी वैसा ही हुआ, उससे आगे हूं आज, हर दिन आगे हो, हर आज हमको कल से आगे देखे। कल जितना योग का चार्ट था, कल जो अमृत वेला किया उसमें नींद का असर था या संपूर्ण जागृत ज्योत थी, अखंड ज्योत। आंखें बंद हो रही थी, जरा भी आंखें बंद होना अमृत वेला अर्थात क्या, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ की है, चाहे रात को सोने की विधि में या दिन भर, इसलिए तो नींद आ रही है, नहीं तो नींद आने का कोई सवाल ही नहीं है। स्वयं भगवान सामने है, नींद कैसे आ सकती है, ऐसा नशा अंदर चढ़ा हो। जागृति, तो ये तीन आदतें, लिखना, पढ़ना और आपस में चर्चा करना। सोच के रखना है मुरली में कि ये पॉइंट नहीं है। अगर कोई ज्ञानी योगी मिल जाए तो उससे जरूर पूछना है, उसको टाइम देख के कभी भी नहीं पूछ लेना, ये आपस में ही चर्चा करते रहना। नहीं तो दो लोग मिलते हैं तो चर्चा यहां वहां की चालू हो गई, पर अगर एक ने चर्चा का रुख मोड़ दिया तो सामने वाला भी रंग जाएगा उसमें। उसके बाद में बुद्धि, इंटेलेक्ट, फरिश्ते की बुद्धि कैसी होती है, दिव्य बुद्धि, कैसी होती है, दिव्य बुद्धि। जजमेंट कैसा होता है, जो निर्णय हम ले रहे हैं वो राइट हो, क्योंकि बाबा से जुड़े हुए हैं, तो जो निर्णय लिया जाता है उस एक एक निर्णय में आत्माओं का कल्याण समाया हुआ होता है, एक एक निर्णय में। टचिंग ऐसी आएगी कि यहां जाओ, टचिंग ऐसी आएगी वहां जाओ, अपने आप पता चलेगा, किसी के कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, अपने आप ही टचिंग सारी अंदर, ये करना है वो करना है, ये करूं वो करूं, और जैसे वो करोगे उसके बाद पता चलेगा उसमें कितना कल्याण समाया हुआ था। बुद्धि, और ऐसी बुद्धि, आज कहा ना बाबा ने दूसरों को सिखाओ, बोला ना ये दो काम तुमको करना, एक दूसरों को रास्ता दिखाना और दूसरा मन मना भाव। कल परसों था ये वशीकरण मंत्र है, ये मूल मंत्र है, ये महामंत्र है। फिर से टॉपिक चिंतन करो, मूल मंत्र क्यों है, महामंत्र क्यों है, वशीकरण मंत्र है क्यों है, किसको वश में करना है इस मंत्र से, सोचना है इसके बारे में। टॉपिक्स निकालो, सोचो, ताकि मन सारे दिन भर बिजी रहे और ऊपर रहे शरीर से। अगर बिजी नहीं रहा तो शरीर की तरफ आएगा। कोई बीमारी है, इतना दर्द होना चाहिए, इतना दर्द होगा, ज्यादा दर्द महसूस होता है जब देह भान में रहते हैं तो। और जो देहभान में कम रहते हैं उनको दर्द भी कम हो जाता है। रात को क्या करो, बाप की याद में सो जाओ तो हाय बीपी, हाय मेरा दर्द, संडे की मुरली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान उवाचे हैं, बाप साथ है यही गोली है। कितनी बड़ी बात बोल दी, बहुत बड़ी बात थी बाबा। तो बुद्धि दिव्य बनानी है इस बुद्धि को, ताकि जो निर्णय ये बुद्धि ले, इस बुद्धि का योग उससे जोड़ के रखना है। जो बुद्धियों की बुद्धि है, तेजस्वियों का जो तेज है, तपस्वियों का जो तप है, उससे अपने आप सारे निर्णय राइट होंगे। पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति आधा समय पश्चाताप में बिताता है, मेरा गलत निर्णय हो गया, गलत निर्णय हो गया, नहीं करना चाहिए था, यही सोचते रहता है दिन रात, क्यों किया ऐसा। उसके बाद में मुख्य कर्तव्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल, उसका फरिश्ते का मुख्य कर्तव्य क्या है, संदेश देना, सुख देना, परमात्म सत्ता को फिर से स्थापित करना संसार में, आत्माओं को परिवर्तित करना, हृदय हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसका मुख्य कार्य है। जैसा प्यार हमारे दिल में है भगवान के लिए, वैसा ही प्यार दूसरों के दिल में हो। जैसा हम सोचते हैं कि कैसे बाबा की सेवा हो, वैसे सब सोचे कि कैसे बाबा की सेवा, दिन रात यही होना संपूर्णता का, ये फरिश्ते का काम है। फरिश्ता अर्थात जो दूसरों को भी फरिश्ता बना दे, ये फरिश्ता है। उसके बाद में अगली बात है यात्रा। फरिश्ता सारे दिन भर यात्रा करते रहता है, कहां कहां की, तीनों लोकों की यात्रा करते रहना है। फरिश्तों की दुनिया है वो सूक्ष्म वतन, ज्यादा से ज्यादा उस लोक में रहना है। इस दुनिया में तुमको कम रहना है, उस दुनिया में ज्यादा रहना है। यहां हो पर जैसे यहां हो ही नहीं, या तो यही सूक्ष्म वतन है या यही परम धाम, यही उसकी अनुभूति, ये सूक्ष्म वतन ही है। ड्यूटी कर रहे, काम कर रहे, सेवा कर रहे, जो कुछ कर रहे, वो पूरा जो भंडारा है पूरा ही सूक्ष्म वतन है, यही समझना। ये सब आत्मा है या फरिश्ते है, ये भी एक ड्रिल बना दो। हर छोटे छोटे कार्य को, स्नान करना भी एक ड्रिल, गाड़ी चलाना भी एक ड्रिल, बैठे हुए वो भी एक ड्रिल, क्लास सुन रहे, मुरली सुन रहे, वो भी एक ड्रिल, उधर वो सब हो रहा है, इधर यहां ड्रिल चालू है, आना जाना आना जाना। बाबा ने कहा यही अभ्यास करते रहो, ताकि ये शरीर में ना फंसो, ये शरीर में फंसे कि खींचता है नीचे पकड़ के, ऐसे पागल कर देता है, पागल। शरीर के ही विचार, शरीर की ही बीमारी, शरीर के ही सब कुछ, सब कुछ सच कुछ, शरीर के भोग, शरीर की भाषा, शरीर के स्थान, शरीर के धर्म, शरीर के संबंध, शरीर की वासनाएं, शरीर की तृष्णाएं, सब कुछ शरीर शरीर घूमते रहता है। मन में शरीर का कम से कम चिंतन, यह है फरिश्ता। इसे ही फरिश्ता स्थिति कहते हैं। उसके बाद में फरिश्ते की भाषा, लैंग्वेज, कौन सी भाषा है फरिश्तों की, मौन। क्या भाषा है, साइलेंस। सारे दिन भर कटर कटर पटर पटर, मौन का कब अभ्यास करेंगे। शिव बाबा की आवाज मौन नहीं सुनाई देती है, वैसे नहीं सुनाई देती है। जहां पहले से ही बहुत आवाज है वहां वो शब्द सुनाई नहीं देते, वो मौन में बात करता है। तो मौन होकर उससे वार्तालाप करना है, मौन मौन में भाषा को सुनना है, क्या वो बोलता है, क्या वो कहता है, क्या उसे कहना है। उसे बहुत कुछ कहना है हमसे, क्या कहना है उसको, उसको कहना है पर उसकी आवाज नहीं आती है। सुनने के लिए मौन का अभ्यास। मौन अर्थात यह भी नहीं कि बस मुख बंद कर दो और चुप हो जाओ। मौन आंतरिक स्थिति है, मौन स्वचिंतन की स्थिति है, ज्ञान चिंतन की स्थिति है। उसके बाद में मन, फरिश्ते का मन कैसा हो? मन में तीन बातें हैं, भावनाएं बहुत ऊंची, विचार श्रेष्ठ और इच्छाएं बहुत श्रेष्ठ इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं नहीं। मन की तीनों ही बातें ऊंची हो, बहुत ऊंची। उसके बाद में ऑक्यूपेशन, धंधा, फरिश्तों का क्या धंधा है? एक ही धंधा है, पहले बताया था कर्तव्य, अभी बताया उसका ऑक्यूपेशन, जॉब क्या है उसका, किस जॉब के लिए यहां आया रखा है उसको भगवान ने, सबको संदेश देना है, फटाफट सबको याद दिलाना है, स्मृति स्वरूप बनाना है, भूली हुई आत्मा, आज की मुरली में आत्मा भूली है अपने घर को, याद दिलाना है सबको कि ये समय समेटने का है, और विस्तार करना नहीं है, बहुत विस्तार कर लिया, बहुत दुख उठा लिया, विस्तार से समेटना है, खुद को भी समेटना है, दूसरी आत्माओं को भी मदद करनी है समेटने में, विस्तार नहीं, मन का भी विस्तार नहीं, बहुत ज्यादा। उसके बाद में शक्ति या पावर्स क्या क्या है फरिश्तों में, कौन सी शक्तियां होती है फरिश्ते में? उड़ने की पावर होती है, सबसे पहले परवाज, उड़ान की शक्ति होती है उसमें, और कौन कितना फास्ट उड़ता है वो पता चलेगा, जिससे कि ये कितना पावरफुल फरिश्ता है, जिसको उड़ने में ही अमृत वेला बैठे, शरीर से निकल ही नहीं पाते, पहले यहां वहां का चिंतन, कितना फास्ट आत्मा निकलकर सीधा परमधाम को टच कर जाती है, और यहां का सारा चिंतन नील, सीधा परमधाम, मैं अशरीरी आत्मा, मैं बीज वो बीज, मैं बिंदु वो बिंदु, मैं स्टार वो स्टार, वो सागर उसमें मैं डूब रही हूं, वो सूर्य उसकी किरणों के नीचे मैं, वो पहाड़ उसको हप कर रही हूं, स्वीट का पहाड़ खा जाऊंगी उसको, यहां पर पंसारी बन जाना है, मैं वो चूहा हूं जो परमात्मा रूपी पहाड़ को पाकर अब क्या बन गया हूं, पंसारी, रूहानी पंसारी। कितना फास्ट हम परमधाम पहुंच जाते, नहीं तो यहां का ही समेटते 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 साढ़े चार और फिर पांच मिनट एक आध योग और तुरंत गीत बज गया, चलो आज का कारोबार पूरा हुआ, अब दूसरा कारोबार, अब ये पूरा हुआ तीसरा कारोबार, कारोबार पूरा करने में लगे हैं बस, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या अर्थात कारोबार, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा, खुशी कोई नहीं। उसके बाद में स्वभाव, नेचर, स्वभाव कैसा हो? सरल स्वभाव, शीतल स्वभाव, स्वभाव में इजीपन, हल्कापन, उसके बाद में क्वालिटीज, फरिश्ते की क्या क्या क्वालिटीज है, आपको ये होमवर्क दे रहे हैं सबको, कल सारे दिन भर बाबा जब तक नहीं आते, कब आ रहे हैं, आज की तारीख 12, 15 को ना, 15 तारीख तक फरिश्ते में क्या क्या गुण होते हैं उसका चिंतन करते रहना, और जब बाबा के सामने बैठेंगे डायमंड हॉल में, मैं फरिश्ता हूं, सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट हम बाबा को क्या दे सकते हैं, फरिश्ता स्थिति की गिफ्ट दे देनी है बाबा को 15 तारीख को, कि आपको गिफ्ट चाहिए, मैं आपके लिए ऐसा गिफ्ट लाया हूं कि आप भी याद करोगे, दंग रह जाओगे, ऐसी हैरत अंगेज गिफ्ट आपके सामने, ये है फरिश्ता स्थिति की गिफ्ट, शरीर से जो बहुत ऊपर है, डिस्टर्बेंस से बहुत ऊपर है, संसार के आकर्षण से बहुत ऊपर है, उपराम है, तो ऐसे गिफ्ट बाबा को 15 तारीख को देना है, आज कितनी है 12, कितने दिन बाकी है, 13, 14, 12 भी 15 भी ले लो, तो 3 दिन काम करना है ऊपर रहने की। उसके बाद में उसके संबंध कैसे होते हैं, रिलेशंस डिटैच्ड, रेसिडेंस कहां रहता है, वो ऊपर रहता है, रिलेशन सारे संबंध, आपसी जो संबंध है उसमें लगाव भरे हुए ना हो, जितने संबंधों में लगाव है उतना उसमें दुर्गंध है, और जितने जो संबंध डिटैच्ड है उतनी उसमें सुगंध है। क्यों फोन करना है, 10 बार फोन करते रहते, इधर फोन उधर फोन, इसको फोन उसको फोन, पहुंच गए अभी भी लौकिक में फोन करना चालू ही है कंटिन्यूस, अभी ये किया, अभी खाना खाया, अभी ये किया। अरे इधर तपस्या करने आए या अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देने आए? हो गए उधर से आ गए ना, बाय बाय, अब जब जाएंगे तब बात करेंगे उनसे। जब शांति से बैठो मधुबन में, अब तपस्या करते घंटे घंटे की इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है किसी को? दादी कहती थी, प्रकाश मेरी दादी, शिविर वालों को, एक बार आ गए अभी घर में फोन कर दो, पहुंच गए, अभी फोन नहीं करना, सीधा जाते समय पहुंच रहे, बस 3 दिन शांति से बैठो। इधर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर बहन जी आए थे, आते समय उसका मोबाइल गुम हो गया, 3 दिन के बाद अनुभव सुना है, बहुत अच्छा हुआ मोबाइल गुम हो गया, बहुत शांति मिली यहां आके, नहीं तो 5-5 मिनट में बचते रहता है। पहली बार ऐसी शांति मिली, कहा था 30 साल में, किससे? मोबाइल गुम होने से। पर अपना मोबाइल संभाल के रखना, नहीं तो वो अशांति का कारण बन जाएगा, कहां गया कहां गया कहां गया। उसके बाद में स्मृति, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना है। तो अभी सभी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, 1-2 बातें हैं ट्रैफिक कंट्रोल के बाद लेते हैं। तो ऐसे बैठेंगे जैसे इस तन में मैं आत्मा 2 शरीरों में बैठी हूं, एक स्थूल शरीर और दूसरा लाइट का शरीर। तो मैं आत्मा इस लाइट के शरीर में बैठकर चारों ओर प्रकाश की किरणें फैला रही हूं, इस स्वरूप का अभी अभ्यास करेंगे। उसके बाद में टीचिंग्स, वो क्या सिखाता है, फरिश्ता कैसे सिखाता है, वो बोल से नहीं अपने आचरण और व्यवहार से सिखाता है। क्योंकि बोल से जब जब हम किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते परिणाम कुछ और ही हो जाता है। जैसे एक बेटा अपनी मां से पूछता है, मम्मी आपके बाल सफेद हो रहे हैं। तो मम्मी सोचती, अच्छा अवसर है, अब इसको कुछ ना कुछ सिखाती हूं। वो कहती है, जब जब तुम शरारत करते हो ना मेरा एक एक बाल सफेद होने लगता है। वो कहता है, अच्छा अब भी पता चला दादी के सारे बाल सफेद क्यों है। उसके बाद में यूनिकनेस, अनूठापन, फरिश्ता का अनूठापन यही है कि वो धरती पर कम रहता है, इस जगत में नहीं रहता है, और उसे आवाज से परे की दुनिया हमेशा खींचती है, बहुत खींचती है। जब भी अवसर मिले चुप, हाँ जब सेवा है, लोगों से बात करना है, 1000 लोगों के बीच में आना है तब बात कर रहे, सेवा अर्थ, काम पूरा हुआ गुफा में, केवल काम से काम, निकले बात किया काम पूरा अपनी गुफा में वापस मौन, क्यों बात करना है, जरूरत नहीं है। एकांत में ज्ञान चिंतन करते रहो, बस बाबा को याद करते रहो, सोचते रहो, उसको धन्यवाद करते रहो, उससे बातें करते रहो, अपने आप से बातें करते रहो। अपने ऊपर ही हंसना, रे मूर्ख मन इतना भी नहीं समझता, अभी भी वही गलती कर रहा है जो पहले की थी और लास्ट टाइम पश्चाताप किया था। आवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक, ऐसा कहा जाता है, हमारी सबसे बड़ा शिक्षक हमारी अंतिम भूल है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। उसके बाद में दृष्टि, विजन, फरिश्ते की दृष्टि हमेशा, दृष्टि वृत्ति कैसी रहेगी, आत्मिक। उसके बाद में वेल्थ, उसके पास में संपत्ति कौन सी है, ज्ञान का धन है, खुशी का धन है, पवित्रता का धन है, और फरिश्ते की सबसे बड़ी संपत्ति है प्यूरिटी। इस संसार में प्यूरिटी से अधिक शक्तिशाली और कुछ भी चीज नहीं है, और जितने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है उनको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये संपत्ति है, किसी भी कीमत में किसी भी हालत में चाहे कोई कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाए, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये प्यूरिटी है तो हम में शक्ति है। प्यूरिटी गई सब गया, खलास निधन के, ब्राह्मण जीवन भिखारी बन जाएंगे, मांगते फिरना पड़ेगा, ज्ञान पढ़ेंगे पर बुद्धि में घुसेगा नहीं, मुरलिया हाथ में है पर बुद्धि भटक रही है। प्यूरिटी एकमात्र ऐसी चीज है जो बुद्धि को एकाग्र कर देती है, शक्तिशाली बना देती है, स्मरण शक्ति को बढ़ा देती है, असंख्य धारणा शक्ति, प्रचंड धारणा शक्ति आ जाती है। एक पॉइंट पढ़ो तो उसके गहरे से गहरे डीपर लेवल के अर्थ दिखाई देने लगते हैं। ये सब किससे होगा? केवल और केवल अखंड ब्रह्मचर्य से। इसके लिए किसी भी कीमत पर वो सारी चीजें जो ब्रह्मचर्य को भंग कर रहे, क्या करना है? उनको उखाड़ कर फेंक देना है, बंद। वो कुछ भी हो सकता है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो, जो भी है। यादें, पुराने भोग, अतीत की वासनाएं, दमित वासनाएं, उखाड़ के फेंक देना है, भस्म कर देना है। अमृत वेला बैठना बाबा के सामने, जैसे यज्ञ कुंड है, प्रज्वलित इमर्ज करना और ये मेरे मन की सारी बातें उसमें स्वाहा। कल सुबह कर लेना अमृत वेला, एक एक निकलने, यहां से निकलती नहीं, बहुत खींचना पड़ेगा ऐसे। स्वाहा, स्वाहा टू, स्वाहा थ्री, स्वाहा फोर, एक एक किचड़ा भस्म करना है, एक भी नहीं रहना पाए, या तो खुद ही बैठ जाना। किचड़े से भरा है, क्या करें? उसके बाद में योग, फरिश्ते का बुद्धि योग एक से रहेगा बस। और लास्ट सिक्योरिटी, वो उसका एकमात्र सुरक्षा है स्वयं भगवान, और किसी की भी सिक्योरिटी की हमको आवश्यकता नहीं है। और वो खुद दूसरों के लिए सिक्योरिटी है। जहां फरिश्ते विद्यमान होते हैं वहां के सभी लोग निश्चिंत हो जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कभी विदेशियों से कहा था कि सारे विदेशी भारत में नहीं आ जाएंगे, अंत में कुछ कुछ को टचिंग हो जाएंगे, होंगे यहां आएंगे, परंतु कुछ कुछ वहीं रहेंगे। किस लिए? सेवा अर्थ, बाबा उनको वहीं रखेगा। वहां की आत्माएं जो भयभीत होगी, तड़पेगी, उनको कौन मुक्ति धाम में पहुंचाएगा? तुम वहीं रहकर उनके वाइब्रेशंस उनको थामे रखेंगे, अभयदान देंगे। तो ऐसी ये 26 बातें हैं फरिश्ते की। तो हमें फरिश्ता बनना है। बाबा 15 को आ रहे हैं, आज से ही अभ्यास चालू करना है। मुझे इस देह से ऊपर रहना और सारा किचड़ा बाहर निकालना है, ताकि बाबा के सामने बैठू डायमंड हॉल में तो ऊपर से किसकी वर्षा हो जाए? फूलों की वर्षा हो जाए। भगवान खुद ऊपर से फूल लेके गिराएगा, हीरो की भी, फूलों की भी, सबकी, देवताएं आ जाएंगे। कौन आ गए? ये फरिश्ते हैं। ऐसी हमारी आंतरिक स्थिति हो। हम शांति।